पृष्ठ संख्या 237, अध्याय 7, बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मनुष्य अपनी विकसित बुद्धि, विवेक, कौशल एवं चातुर्य के कारण ही सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। उसमें सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण करने, भावों अथवा विचारों को व्यक्त करने, समस्याओं को सुलझाने एवं नवीन वातावरण में समायोजित होने की अद्भुत शक्ति एवं विलक्षण गुण होता है, तभी वह संपूर्ण संसार में अपना साम्राज्य स्थापित कर सका है। आकाश में पक्षियों की भांति विचरण करना, समुद्र की लहरों से खेलना, धरती के गर्भ में छिपे हुए बहुमूल्य खनिज संपदा को बाहर निकालना, रेगिस्तान के रेत के ढेरों से पेट्रोलियम पदार्थ निकालना, पानी की तरंगों से विद्युत का निर्माण करना, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को लांघना, चंद्रमा की सैर करना, ये सभी क्रियाएं मानव ही श्रेष्ठ बुद्धि की ही देन है। मानव अपने बुद्धि के बल पर ही हाथी एवं विशाल एवं सिंह जैसे खूंखार जानवर को अपने वश में कर लेता है। वह जहरीले सांपों को पकड़कर उनके जहर के जीवन रक्षक के रूप में औषधि बना लेता है। अतः स्पष्ट है कि मानव विभिन्न कारणों में अपनी विकसित बुद्धि के कारण ही कर पाता है। क्या है बुद्धि? व्हाट इज इंटेलिजेंस? दैनिक बोलचाल की भाषा में बुद्धि, इंटेलिजेंस एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से करता है, परंतु मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका व्यापक अर्थ है। इसके अनुसार बुद्धि से तात्पर्य सीखने की योग्यता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, तर्क करने की योग्यता, विभिन्न वस्तुओं को पहचानने की योग्यता एवं नवीन वातावरण में समायोजित होने की क्षमता है। अतः बुद्धि में केवल एक ही गुण समाहित नहीं है, बल्कि यह तो गुणों का समुच्चय है। कहने का अर्थ है कि बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को नित्य परिवर्तित परिस्थितियों में भी समायोजित होने की क्षमता प्रदान करती है। ध्यान रहे, बुद्धि कोई मूर्त वस्तु नहीं है जिसे देखा या छुआ जा सके, यह तो अमूर्त है, इसलिए केवल इसके प्रभावों एवं परिणामों को ही जाना जा सकता है। बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति की योग्यताओं का निर्धारण होता है और कुशाग्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही प्रखर व कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, जो अपनी बुद्धि क्षमताओं का प्रयोग कर समस्याओं का निराकरण आसानी से कर लेते हैं, वैसे व्यक्ति योग्य एवं कुशल कहलाते हैं। पृष्ठ संख्या 238। बुद्धि वंशानुक्रम पर आधारित होता है, परंतु इसके विकास में प्रशिक्षण, अधिगम एवं उचित वातावरण का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बालकों में बुद्धि का विकास भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विकास की भांति धीरे धीरे एवं क्रमबद्ध तरीके से होता है। अतः मनुष्य में बौद्धिक विकास भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में अविराम गति से चलती रहती है। बालकों की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उसका बौद्धिक विकास होता जाता है। जन्म के समय एक नवजात शिशु केवल रोता है, वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति केवल रोकर करता है, किंतु जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, अब वह शिशु भूख लगने पर अपने आसपास के लोगों का ध्यानाकर्षण के लिए भाव भंगिमा एवं संकेतों का प्रयोग करता है। एक वर्ष का बालक भूख लगने पर दूध की बोतल उठाकर अपनी माँ के पास लाता है और तुतलाते हुए दूध पीने की मांग करता है, अथवा रोटी के स्थान पर लोटी कहता है। इस प्रकार धीरे धीरे बालक के अनुभवों एवं ज्ञान में वृद्धि होती जाती है और वह अपने अनुभव एवं ज्ञान का प्रयोग करके अपने विभिन्न बौद्धिक क्षमता के कारण ही विद्यालय, संगी साथियों, कक्षा के साथियों के बीच अपना समायोजन आसानी से कर लेता है। अतः मानसिक सजगता या बुद्धि का विकास ही बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहलाता है। बुद्धि की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। विभिन्न विद्वानों ने बुद्धि के संबंध में अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्नानुसार हैं। नंबर एक, बीने के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जिसकी सहायता से वह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित व्यवहार करता है आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन ला सकता है और समय आने पर वह जान जाता है कि उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। अतः विनय की परिभाषा से स्पष्ट है कि व्यक्ति पहले समस्या से उत्पन्न होने के कारण को समझता है, तब फिर उस पर विचार करता है, फिर उसी के अनुसार व्यवहार करता है और अंत में यह देखता है कि लक्ष्य की पूर्ति हुई है या नहीं। अर्थात बुद्धि विभिन्न मानसिक योग्यताओं का समुच्चय है। कंप्रिहेंशन, इन्वेंशन, डायरेक्शन एंड कॉन्सरशिप इंटेलिजेंस लाइज इन दीज फोर वर्ड्स। नंबर दो, वुडवर्ड्स के अनुसार विगत अनुभवों एवं वर्तमान प्रत्यक्ष के आधार पर मानसिक समस्याओं को हल करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। इंटेलिजेंस इज द जनरल एबिलिटी टू सॉल्व इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट वियरिंग एंड प्रेजेंट ग्रैप इज एसेंशियल। इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलेक्ट पुट टू यूज। वुडवर्थ। प्रश्न संख्या 239। नंबर तीन, स्टर्न के अनुसार नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू अ न्यू सिचुएशन। विलियम स्टर्न। नंबर चार, विस्लर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की शक्तियों का वह समुच्चय या ग्लोबल वैश्विक क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, तर्कपूर्ण चिंतन करता है और प्रभावपूर्ण ढंग से वातावरण के साथ समायोजन करता है। इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट आर ग्लोबल कैपेसिटी टू एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पजली, टू थिंक रेशनली एंड आर डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरनमेंट। नंबर पाँच, टर्मन के अनुसार अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। टर्मन। नंबर छः, गैरेट के शब्दों में बुद्धि उन समस्याओं को हल करने की योग्यता है जिनमें ज्ञान एवं प्रतीकों के प्रयोग की आवश्यकता है, जैसे शब्द, अंक, समीकरण, रेखाचित्र, सूत्र आदि। द एबिलिटी इज डिमांडेड इन द सिचुएशन टू सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर टू कंप्रिहेंशन एंड यूज द सिंबल्स दैट इज वर्ड्स नंबर डायग्राम इक्वेशन फार्मूला एटीसी। नंबर छः, हैवर एवं फ्रायड के अनुसार शीघ्र सीखने एवं अधिगम धारण करने की क्षमता बुद्धि कहलाती है। इंटेलिजेंस इज समटाइम्स डिजाइंड एज द एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड टू रिटेन लर्निंग। हैवर एंड फ्रायड 1975। नंबर सात, थर्नडाइक के शब्दों में गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू टेक एडवांटेज फ्रॉम लॉस्ट एक्सपीरियंसेस। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बुद्धि में केवल एक ही योग्यता समाहित नहीं है, बल्कि यह विभिन्न मानसिक योग्यताओं का योग है जिसके अंतर्गत सोचना, समझना, विचार करना, चिंतन करना, स्मरण करना, तर्क करना, समस्याओं को सुलझाना, नवीन वातावरण से समायोजन करना आदि बातें सम्मिलित हैं। बुद्धि की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि की प्रवृत्ति में निम्न बातें समाहित हैं। नंबर एक, सीखने की क्षमता एबिलिटी टू लर्न। नंबर दो, तर्क करने की योग्यता एबिलिटी टू डिस्कस। नंबर तीन, विभिन्न वस्तुओं को पहचानने की योग्यता एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट थिंग्स। नंबर चार, अमूर्त चिंतन की योग्यता एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। पृष्ठ संख्या 240। नंबर पाँच, बुद्धि अनेक अनुभवों एवं अभ्यासों का एक समुच्चय है। इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड अ ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस। इस प्रकार बुद्धि एक ऐसी मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में विभिन्न क्रियाओं को करते हैं, जैसे चिंतन करना, विचार करना, तर्क करना, स्मरण करना, शोध करना, आत्मबोध, समस्याओं का निराकरण का उपाय सोचना, नवीन परिस्थितियों में समायोजित होना आदि। बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड नॉलेज। आम बोलचाल की भाषा में बुद्धि एवं ज्ञान का एक ही अर्थ लिया जाता है, जबकि मनोविज्ञान में इन दोनों ही शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ एवं महत्व है। बुद्धि का अर्थ समझ, अंडरस्टैंडिंग से लिया जाता है, जो कि एक आनुवांशिक शक्ति है, वही ज्ञान अर्जित शक्ति है जिसे व्यक्ति मेहनत एवं अभ्यास से प्राप्त कर सकता है। निम्न तालिका में बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर को समझाया गया है। बुद्धि इंटेलिजेंस, ज्ञान नॉलेज। नंबर एक, बुद्धि एक जन्मजात आनुवांशिक शक्ति है, ज्ञान अर्जित योग्यता है। नंबर दो, बुद्धि साध्य है, ज्ञान उस साध्य तक पहुंचने का साधन है। नंबर तीन, बुद्धि अपरिवर्तनीय जिसे ना तो घटाया जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता है, ज्ञान परिवर्तनशील है, कठोर श्रम द्वारा ज्ञान का विकास किया जा सकता है। नंबर चार, बुद्धि व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, ज्ञान व्यक्ति को विद्वान बनाता है। नंबर पाँच, बुद्धि शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन एवं निर्देशन करती है, अतः बुद्धि के सभी अंगों का विकास होता है, ज्ञान से किसी विशिष्ट अंगों का ही विकास होता है। नंबर छः, बुद्धि एक प्रकार की योग्यता तथा योग्यताओं का संयोगीकरण है जिसे व्यक्ति विवेकशील बनता है व अमूर्त चिंतन कर सकता है, ज्ञान का क्षेत्र सीमित होता है, व्यक्ति किसी विषय में ही विद्वान बन सकता है। नंबर सात, बुद्धि नष्ट होने से बौद्धिक क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं, ज्ञान नष्ट होने से केवल एक ही अंगों अथवा क्षेत्रों का विकास रुक जाता है। नंबर आठ, बाल्यकाल में 9 से 10 वर्षों तक बुद्धि का विकास तीव्र गति से होता है, फिर 11 वर्ष में विकास की गति मंद हो जाती है, 13 से 14 वर्ष में बुद्धि के विकास की गति फिर तीव्र हो जाती है, 18 वर्ष तक बौद्धिक विकास अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, ज्ञान का विकास जीवन पर्यंत होता रहता है। पृष्ठ संख्या 241, बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट। फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने अध्ययनों के दौरान यह पाया कि यदि मंद बुद्धि के बालकों की अलग से विशेष कक्षाओं का प्रबंध किया जाए तथा शिक्षण की व्यवस्था की जाए तो वे अपने बुद्धि का विकास कर सामान्य जीवन जी सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उनके सामने एक चुनौती थी कि इसका पता कैसे लगाया जाए कि कक्षा में कितने बालक बुद्धि की कमी के कारण असफल होते हैं। अतः इन्होंने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक साइमन के सहयोग से बुद्धि परीक्षण हेतु 1905 में एक मानदंड स्केल तैयार किया जिसे बिने साइमन बुद्धि मानदंड कहा जाता है। इस मानदंड में अनेक प्रश्नों से युक्त प्रश्नावली तैयार की गई। प्रत्येक प्रश्नावली में प्रश्नों को क्रमबद्ध ढंग से सजाकर रखा जाता है। सबसे पहले सरल प्रश्नों को स्थान दिया गया, फिर कठिन प्रश्नों को और सबसे अंत में कठिनतम प्रश्नों को। प्रश्नावली में प्रश्न इस प्रकार से तैयार किए गए कि 6 वर्ष का बालक जिन प्रश्नों को हल कर लेता था उसे 4 वर्ष का बालक हल नहीं कर सकता था। यदि 4 वर्ष का बालक उन प्रश्नों को सही सही जवाब दे देता था तो वह कुशाग्र बुद्धि वाला बालक कहलाता था। इसी प्रकार जो बालक केवल अपनी आयु वाले प्रश्नों को हल कर लेता था उसे सामान्य बुद्धि वाला बालक, जो अपनी उम्र से अधिक उम्र के प्रश्नों को हल करता था वह कुशाग्र बुद्धि वाला बालक, तथा जो अपनी आयु से कम आयु वाले प्रश्नों को हल करता था वह मंद बुद्धि वाला बालक समझा जाता था। विने साइमन ने 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बालकों के लिए विभिन्न विभिन्न प्रश्नावलियां तैयार की। ये बुद्धि परीक्षण वाली प्रश्नावलियां बालकों की बुद्धि मापन में काफी प्रसिद्ध हुई। बुद्धि परीक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। विने साइमन ने बुद्धि परीक्षण के बाद विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों ने बुद्धि परीक्षण हेतु कई अलग अलग मानदंड तैयार किए, जिसमें से कुछ तो शाब्दिक थे तो कुछ अशाब्दिक, कुछ सामूहिक थे तो कुछ व्यक्तिगत। कुछ परीक्षणों से बालकों के प्रश्न सुलझाने की गति मापी जाती थी तो कुछ से उनकी शुद्धता। इस अध्याय में केवल कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षणों के संबंध में ही जानकारी दी जा रही है। नंबर एक, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। इस परीक्षण में परीक्षणकर्ता एक समय में केवल एक ही व्यक्ति की बुद्धिमापन कर सकता है। परीक्षण केवल परीक्षणकर्ता पहले से ही प्रश्नों को तैयार कर लेता है। बुद्धि परीक्षण में प्रयोग किए गए प्रश्न शाब्दिक, अशाब्दिक, क्रियात्मक अथवा किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, अथवा इनमें तीनों ही प्रकार के प्रश्न शामिल हो सकते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण द्वारा व्यक्ति का मापन करते समय यह जरूरी है कि परीक्षणकर्ता का संबंध परीक्षार्थी के साथ मधुर एवं सौम्यपूर्ण हो, साथ ही वह योग्य, कुशल, व्यवहारिक व प्रशिक्षित हो, ताकि परीक्षार्थी बिना भय के निसंकोच रूप से उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। प्रश्नों के उत्तर आ जाने के उपरांत परीक्षणकर्ता निर्धारित मापदंड के आधार पर परीक्षार्थी की मानसिक योग्यता का मूल्यांकन करता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत निम्नांकित परीक्षण आते हैं। नंबर एक, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। नंबर दो, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। नंबर तीन, वेस्लर बुद्धि परीक्षण। नंबर चार, मैरिल पामर बुद्धि परीक्षण। नंबर पाँच, मेनोसोटा पूर्व विद्यालय परीक्षण। नंबर छः, कोड्ज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। नंबर सात, जैसल विकास अनुसूची। नंबर आठ, बर्ट तर्क बुद्धि परीक्षण। नंबर नौ, भाटिया बुद्धि परीक्षण। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर एक, परीक्षण में परीक्षणकर्ता का परीक्षार्थी के साथ मधुर, सौहार्दपूर्ण व सौम्य संबंध होना चाहिए। नंबर दो, चूंकि इस परीक्षण में परीक्षणकर्ता एवं परीक्षार्थी का संबंध आमने सामने का होता है, अतः प्रश्नों के सही सही उत्तर होते हैं। नंबर तीन, परीक्षणकर्ता परीक्षार्थी के कार्यों, विचारों, मानसिक स्थिति आदि का भी अध्ययन कर सकता है। इस प्रकार वह परीक्षार्थी की कमियों और विशेषताओं से भी अवगत हो जाता है। नंबर चार, परीक्षणकर्ता परीक्षार्थी की बुद्धि का गहन अध्ययन कर सकता है। नंबर पाँच, इस परीक्षण से मंदबुद्धि के बालकों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, अतः मंदबुद्धि के बालकों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षण व्यवस्था की जाती है। उनके लिए अलग से कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। नंबर छः, चिकित्सा के क्षेत्रों में यह परीक्षण अत्यंत उपयोगी है। नंबर सात, इसके परिणाम काफ़ी विश्वसनीय होते हैं। नंबर आठ, कुशल एवं योग्य परीक्षणकर्ता की आवश्यकता होती है। इतनी विशेषताएं होने के बावजूद भी इन परीक्षण की सीमाएं हैं। ये सीमाएं निम्नानुसार हैं। सीमाएं, नंबर एक, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जा सकता है, अतः इस परीक्षण द्वारा बुद्धिमापन में अधिक धन, समय एवं ऊर्जा व्यय होता है। नंबर दो, प्रशिक्षित, योग्य एवं कुशल परीक्षणकर्ता के अभाव में इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। नंबर तीन, मानसिक योग्यता का मूल्यांकन करते समय कई कठिनाइयां आती हैं। पृष्ठ संख्या 243। नंबर दो, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। चूंकि विनय साइमन का बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत था, इस कारण एक एक व्यक्ति के बुद्धि परीक्षण में बहुत अधिक समय, शक्ति एवं धन व्यय होता था। इसलिए यह महसूस किया गया कि ऐसे बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया जाए जिससे एक समय में एक साथ ही व्यक्तियों के विशाल बुद्धि का परीक्षण किया जा सके, और इसी का परिणाम निकला सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत निम्न बुद्धि परीक्षण आते हैं। नंबर एक, आर्मी अल्फा परीक्षण। नंबर दो, आर्मी बीटा परीक्षण। नंबर तीन, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण। नंबर चार, कुदलमन एंडरसन बुद्धि परीक्षण। नंबर पाँच, टर्मैन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी। नंबर छः, डॉक्टर प्रयाग मेहता सामान्य बुद्धि परीक्षण। नंबर सात, फलोटा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। नंबर आठ, नाथेम्बर लैंड टेस्ट। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के समय तब हुआ जब पहली बार अमेरिका में सन 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। तब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने बुद्धि परीक्षणों के निर्माण के लिए एक समिति बनाई। समिति ने 1921 में आर्मी अल्फा एवं आर्मी बीटा का निर्माण किया। इस परीक्षण के आधार पर अमेरिकी सैनिकों का बुद्धि परीक्षण किया गया और लाखों करोड़ों व्यक्तियों में से योग्य व्यक्ति को आर्मी के अधिकारी व सैनिक हेतु चुना गया। नंबर एक, आर्मी अल्फा परीक्षण का निर्माण शिक्षित व्यक्तियों के बुद्धिमापन हेतु किया गया जो अंग्रेजी जानते थे। नंबर दो, आर्मी बीटा परीक्षण, यह परीक्षण उन लोगों के लिए तैयार किया गया जो अनपढ़ व अशिक्षित थे तथा अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की तरह ही सामूहिक बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की सूची पूर्व में ही तैयार कर ली जाती है। प्रश्नावली के साथ ही आवश्यक निर्देश भी छपे रहते हैं तथा उसी के साथ संलग्न रहते हैं। पृष्ठ संख्या 244। बुद्धिमापन हेतु परीक्षणकर्ता परीक्षार्थियों को किसी बड़े कमरे में या हॉल में बैठाकर प्रश्नावलियों को बांट देता है। उन्हें आवश्यक निर्देश पढ़कर भी सुना देते हैं, फिर एक निर्धारित अवधि के पश्चात सभी प्रश्नावलियों को एकत्रित कर लेते हैं। प्रश्नों के उत्तर हाँ अथवा नहीं, ट्रू आर फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आदि पैटर्न पर आधारित होते हैं। कभी कभी प्रश्नों का उत्तर एक या दो प्रश्नों में उन प्रश्नों के सामने ही लिखना होता है। विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर एक, सामूहिक बुद्धि परीक्षण हेतु शिक्षित योग्य कुशल एवं प्रशिक्षित प्रशिक्षणकर्ता की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर दो, थोड़े ही समय में व्यक्तियों के विशाल समूह का बौद्धिक परीक्षण किया जा सकता है। नंबर तीन, अल्प समय में ही अनेक व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है, फलतः समय शक्ति एवं धन की बचत होती है। नंबर चार, परीक्षार्थी परीक्षा काल में परीक्षक के व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं होता है और निर्भय होकर स्वतंत्रता पूर्वक परीक्षा देता है। नंबर पाँच, इस प्रकार के परीक्षण का उपयोग निर्देशन के क्षेत्र में वर्गीकरण एवं व्यक्तियों के चयन के क्षेत्र में बुद्धि मापने हेतु किया जाता है। नंबर छः, इसका मानकीकरण अधिक सरल है। सीमाएं लिमिटेशंस। नंबर एक, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की भांति इस परीक्षण द्वारा परीक्षार्थी के बुद्धि का गहन अध्ययन संभव नहीं है। नंबर दो, समस्यात्मक मंद बुद्धि एवं कम आयु के बालकों के लिए यह परीक्षण उपयुक्त नहीं है। नंबर तीन, चूँकि परीक्षणकर्ता का परीक्षार्थी से मधुर एवं सौम्य संबंध स्थापित नहीं हो पाता है, इसलिए इन परीक्षणों से प्राप्त बुद्धि की विश्वसनीयता एवं वैधता अधिक नहीं होती है। नंबर तीन, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में परीक्षार्थी को प्रश्नों का उत्तर शाब्दिक रूप से देना पड़ता है। परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर मौखिक अथवा लिखित रूप में देते हैं। दूसरे शब्दों में शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जिनके पदों में भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और परीक्षार्थी को उन प्रश्नों का लिखित उत्तर अथवा मौखिक रूप से देना पड़ता है। इन परीक्षण में पेपर पेंसिल का उपयोग किया जाता है। ये परीक्षण व्यक्तिगत अथवा सामूहिक एवं गति एवं शक्ति दोनों प्रकार के हो सकते हैं। प्रमुख शाब्दिक परीक्षण अग्रानुसार हैं। नंबर एक, आर्मी अल्फा परीक्षण। नंबर दो, आर्मी बीटा परीक्षण। नंबर तीन, डॉक्टर जलोटा का बुद्धि परीक्षण। नंबर चार, डॉक्टर प्रयाग मेहता बुद्धि परीक्षण। नंबर पाँच, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। पृष्ठ संख्या 245। विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स। इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण में भाषा का उपयोग किया जाता है। नंबर दो, इस परीक्षण का प्रयोग व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही रूपों में किया जाता है। नंबर तीन, इसमें पेंसिल पेपर का उपयोग होता है, इसलिए इसकी वैधता एवं विश्वसनीयता अधिक होती है। सीमाएं लिमिटेशंस। नंबर एक, चूंकि इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस परीक्षण में केवल उन्हीं लोगों का बुद्धिमापन किया जाता है जो उस भाषा को जानते हैं। अशिक्षित, अनपढ़, छोटे बालकों एवं अन्य भाषाओं को जानने वाले लोगों के लिए यह परीक्षण उपयोगी नहीं है। नंबर दो, इस परीक्षण का उपयोग सीमित है। नंबर तीन, परीक्षण हेतु प्रश्नावली तैयार करने के लिए शिक्षित योग्य व कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण अथवा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट / परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट, ये वे बुद्धि परीक्षण हैं जिनमें भाषा एवं शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है अपितु क्रियात्मक रूप से बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए इस परीक्षण को क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण या निष्पादन परीक्षण भी कहते हैं। इस परीक्षण के प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के पद, ज्यामितीय चित्र, अमूर्त चित्र, निर्जीव पदार्थ आदि की सहायता से तैयार किए जाते हैं। यह परीक्षण गूंगे, बहरे, अंधे, शिक्षित, अशिक्षित सभी प्रकार के लोगों के बुद्धिमापन के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में परीक्षार्थी के प्रश्नों के उत्तर लिखकर या बोलकर नहीं देने पड़ते, बल्कि उन्हें कोई व्यवहारिक कार्य करके दिखाना होता है। यह परीक्षण व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट, इसमें लकड़ी या गत्ते के टुकड़े पर कुछ डिजाइन बनाने के लिए दिए जाते हैं। कभी कभी भूल भुलैया परीक्षा विधि भी उपयोग में लिए जाते हैं। इस तरह दर्पण में देखकर कुछ चित्रों अथवा आकृति को बनाने के लिए दिया जाता है। इसी प्रकार चित्रों के कुछ टुकड़ों को व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थित करना, चित्रों की पूर्ति करना, किसी वर्ग का निर्माण करना आदि क्रियात्मक परीक्षण के ही उदाहरण हैं। पृष्ठ संख्या 246, विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर एक, अशाब्दिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में उन सभी व्यक्तियों का बुद्धिमापन किया जाता है जो अंधे गूंगे बहरे हैं। इसके अलावा अशिक्षित बालकों, छोटे बालकों एवं विदेशी भाषा को जानने वाले लोगों का भी बुद्धिमापन आसानी से किया जा सकता है। नंबर दो, इस परीक्षण द्वारा दो देशों और दो संस्कृतियों के व्यक्तियों की बुद्धि का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। नंबर तीन, इस परीक्षण का सफलतापूर्वक प्रयोग सेना एवं पुलिस अधिकारियों के चयन हेतु किया जाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति की व्यवहारिक बुद्धि एवं कार्यकुशलता का आसानी से पता चल जाता है। नंबर चार, इन परीक्षणों में प्रश्नों की रचना अति प्रशिक्षित वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। नंबर पाँच, परीक्षण की वैधता एवं विश्वसनीयता अधिक है। नंबर पाँच, अन्य प्रकार के बुद्धि परीक्षण अदर इंटेलिजेंस टेस्ट। कुछ ऐसे भी बुद्धि परीक्षण हैं जो शाब्दिक भी हैं और अशाब्दिक भी। इस प्रकार के परीक्षणों में प्रश्न छपे रहते हैं जिनका उत्तर हाँ अथवा नहीं, सत्य अथवा असत्य, खाली स्थान भरो, बहु विकल्प उत्तर आदि प्रारूपों में देना होता है। साथ ही क्रियात्मक योग्यताओं से संबंधित व्यवहारिक कार्य भी करने पड़ते हैं। अतः ऐसे बुद्धि परीक्षण द्विमापीय बुद्धि परीक्षण कहलाते हैं। इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नानुसार हैं। नंबर एक, वेस्लर प्रौढ़ बुद्धि परीक्षण। नंबर दो, बालकों के लिए वेस्लर का बुद्धि परीक्षण मानदंड। इन दोनों ही प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का उपयोग पहचान अथवा निदान में किया जाता है। इस कारण इन्हें डायग्नोस्टिक इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं। नंबर छह, समय सीमा युक्त परीक्षण। इस प्रकार के परीक्षण में समय का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए समय सीमा का निर्धारण किया जाता है। परीक्षार्थी को उस निश्चित अवधि में ही प्रश्नों के सही सही उत्तर देने होते हैं। इस परीक्षण में परीक्षार्थी को प्रश्न हल करने की गति की परख होती है। नंबर सात, समय सीमा रहित परीक्षण। इस प्रकार के परीक्षण में समय की कोई सीमा नहीं होती है। परीक्षार्थी प्रश्नों को हल करने में जितना समय चाहे ले सकता है। ऐसे परीक्षणों में व्यक्ति विशेष परीक्षार्थी की शुद्धता की जांच की जाती है। पृष्ठ संख्या 247, बुद्धि परीक्षण के प्रकार एक नज़र में, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट एट अ ग्लांस। बुद्धि परीक्षण के प्रकार शाब्दिक, शाब्दिक के अंतर्गत व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत उदाहरण, नंबर एक, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। नंबर दो, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। नंबर तीन, वेस्लर बुद्धि परीक्षण। नंबर चार, मैरिल पामर बुद्धि परीक्षण। नंबर पाँच, द मिनटोशा प्री स्कूल स्केल। बुद्धि परीक्षण के प्रकार के अंतर्गत ही समय सीमा बुद्धि परीक्षण और समय सीमा रहित बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक अथवा क्रियात्मक, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। बुद्धि परीक्षण का एक अन्य प्रकार है अन्य प्रकार का बुद्धि परीक्षण। कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षण, सम इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस टेस्ट। नंबर एक, विने साइमन बुद्धि परीक्षण, विने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट। सर्वप्रथम फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड विने ने ही बालकों की बुद्धि को मापने के लिए एक मानदंड तैयार किया। उन्होंने यह मानदंड अपने एक सहयोगी साइमन की सहायता से की, इसलिए इस परीक्षण का नामकरण ही उन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया। यह मापदंड काफी उपयोगी एवं लोकप्रिय रहा तथा मंदबुद्धि के बालकों के चयन में काफी मददगार रहा। विनय साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट में बालकों की बुद्धि परीक्षण हेतु 30 क्रियाओं का समावेश किया गया, जिसमें सबसे पहले सरल प्रश्न रखे गए, फिर कठिन प्रश्न और अंत में कठिनतम प्रश्नों को स्थान दिया गया। यह बुद्धि परीक्षण मानदंड 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए तैयार किया गया था। विनय व साइमन ने अपने इस परीक्षण में बालकों की आयु का विशेष ध्यान रखा, क्योंकि उनका मानना था कि आयु का मानसिक आयु मेंटल एज से गहरा एवं घनिष्ठ संबंध है। जैसे जैसे बालकों की उम्र बढ़ती जाती है, उनकी बुद्धि एवं मानसिक योग्यता का विकास होता जाता है। बुद्धि की गणना हेतु उन्हें बुद्धि लब्धि आईक्यू एवं मानसिक आयु विधि का प्रयोग किया जाता है। विनय साइमन ने अपने इस परीक्षण में ऐसे प्रश्नों को स्थान दिया जिसे यदि बच्चा अपने से कम आयु वाले बच्चों की परीक्षा ही पास कर पाता है तो आपकी बुद्धि कम समझी जाती थी, परंतु यदि वह अपनी आयु के लिए निर्धारित परीक्षा पास कर लेता था तो उसकी बुद्धि सामान्य समझी जाती थी। इस प्रकार से यदि बालकों में अपनी आयु से अधिक आयु के बच्चों के लिए निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता था तो उसे कुशाग्र बुद्धि वाला बालक माना जाता था। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए 10 वर्ष का बालक 12 वर्ष के बालकों के लिए निर्धारित परीक्षा को पास कर लेता था तो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष ही समझी जाती थी, भले ही उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष हो। इसी प्रकार 10 वर्ष का बालक 8 वर्ष के बालकों के लिए निर्धारित परीक्षा को ही उत्तीर्ण कर पाता था तो उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष मानी जाती थी। इस प्रकार यदि 10 वर्ष का बालक अपनी ही उम्र के बालकों के लिए निर्धारित परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाता था तो उसकी आयु भी 10 वर्ष ही मानी जाती थी। अतः स्पष्ट है कि मानसिक आयु से बालक की सामाजिक परिपक्वता का संकेत मिलता है। एक व्यक्ति की मानसिक आयु जितनी अधिक होती है उसकी विभिन्न मानसिक योग्यताओं का उतना ही अधिक विकास होता है। मानसिक आयु एवं बुद्धिलब्धि मेंटल एज एंड आईक्यू। नंबर 1 मानसिक आयु मेंटल एज। मानसिक आयु से तात्पर्य है कि कोई बालक अपनी वास्तविक आयु शारीरिक आयु से कितनी अधिक मात्रा में बुद्धि परीक्षण पास कर लेता है। यदि कोई बालक अपनी आयु के अनुपात में अधिक आयु के बुद्धि परीक्षा को पास कर लेता है तो वह कुशाग्र बुद्धि वाला बालक कहा जाता है, क्योंकि उसकी मानसिक आयु अधिक होती है। इसी प्रकार यदि बालक केवल अपनी ही आयु की बुद्धि परीक्षा को पास करता है तो वह सामान्य बुद्धि का बालक कहा जाता है, क्योंकि उसकी मानसिक एवं शारीरिक आयु दोनों ही बराबर है। परंतु यदि बालक अपने से कम उम्र के बालकों के लिए निर्धारित बुद्धि परीक्षा को पास कर पाता है तो वह मंद बुद्धि का बालक कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि कोई 8 वर्ष का बालक 10 वर्ष के बालकों के लिए निर्धारित बुद्धि परीक्षा को पास कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष की होगी, भले ही बालक की वास्तविक उम्र 8 वर्ष ही क्यों ना हो। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निसंकोच कहा जा सकता है कि मानसिक आयु व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति है जिसका कथन एक आयु विशेष से प्रत्याशित उसके कार्य निष्पादन के रूप में किया जाता है। अतः इससे बालक की मानसिक परिपक्वता के बारे में जानकारी मिलती है। पृष्ठ संख्या 249 बुद्धिलब्धि इंटेलिजेंस क्वोटेंट। बालक की बुद्धि का आकलन बुद्धिलब्धि आईक्यू से की जाती है। स्टर्न ही वह पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानसिक आयु के लिए बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग किया। बुद्धिलब्धि से तात्पर्य मानसिक परीक्षणों के आधार पर शारीरिक आयु के अनुसार मानसिक योग्यता का ज्ञान प्राप्त करना है। आईक्यू के आधार पर ही यह पता आसानी से लगाया जा सकता है कि बालक की बुद्धि औसत है, औसत से कम है अथवा औसत से अधिक। सारांश में आईक्यू से बौद्धिक क्षमता का ज्ञान होता है जिसके आधार पर बालकों के सुनहरे भविष्य निर्माण हेतु प्रयास किया जा सके, उन्हें निर्देशित किया जा सके और अच्छे प्रशिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था की जा सके। आईक्यू मानसिक विकास की गति बताती है। क्रूज के अनुसार बुद्धिलब्धि एक ऐसा तरीका है जिसका उपयोग इस बात का ज्ञान दिलाने में किया जाता है कि एक व्यक्ति विशेष का देश के जन समुदाय की तुलना में बुद्धि की दृष्टि में क्या स्थान है। टरमैन ने 1916 में अपने पहले बुद्धि के फलांकन की विधि बताई। उन्होंने यह बताया कि बुद्धि का फलांकन आईक्यू की गणना द्वारा करना चाहिए। आईक्यू की गणना निम्न प्रकार से किया जाता है। आईक्यू की गणना हेतु पहले मानसिक आयु में शारीरिक आयु से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है और उस संख्या में 100 से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है वही आईक्यू कहलाता है। इसे निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, IQ is equal to MA upon CA into 100, जहां IQ is equal to बुद्धि लब्धि, MA equal to mental age, CA equal to chronological age, वास्तविक आयु। इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी बालक की शारीरिक उम्र 10 वर्ष है और वह 12 वर्ष के बालकों के लिए निर्धारित परीक्षणों में प्रयुक्त प्रश्नों को हल कर लेता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी मानसिक उम्र 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि सूत्र के अनुसार IQ इज इक्वल टू MA अपान CA इंटू 100 इज इक्वल टू 12 अपान 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 120। अतः बालक की बुद्धि लब्धि 120 है, जो ब्राइट एवरेज के अंतर्गत आता है। टर्मैन ने IQ के वितरण को भी ज्ञात किया। निम्न तालिका में वेस्लर प्रौढ़ बुद्धि परीक्षण 1955 तथा स्टैनफोर्ड विने इंटेलिजेंस टेस्ट पर आधारित मार्लेल 1938 के IQ के वितरण को दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 250, तालिका मेरिल और वेस्लर के अनुसार IQ का वितरण। IQ का वितरण मेरिल के अनुसार, IQ का वितरण वेस्लर के अनुसार। बुद्धि लब्धि IQ, समूह ग्रुप 140 एंड अबव प्रतिभाशाली, 120 एंड 139 अतिश्रेष्ठ, 110 से 119 तीव्र बुद्धि, 90 से 109 सामान्य बुद्धि, 80 से 89 औसत से कम, 70 से 79 सीमावर्ती, बिलो 70 मेंटलिटी डिफेक्टिव। IQ का वितरण वेस्लर के अनुसार 130 एंड अबव अतिश्रेष्ठ, 120 से 129 श्रेष्ठ, 110 से 119 श्रेष्ठ से अधिक, 90 से 109 औसत बुद्धि, 80 से 89 मंद सामान्य, 70 से 79 सीमावर्ती, बिलो 70 मंद बुद्धि। इसके बाद भी मनोवैज्ञानिकों ने IQ का वर्गीकरण किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। बुद्धि लब्धि IQ, समूह ग्रुप 50 से 69 मूर्ख, 20 से 49 मूढ़, 20 से कम जड़ बुद्धि। वेस्लर ने प्रौढ़ जनसंख्या में IQ के वितरण का प्रतिशत भी लगाया है। इसके अनुसार एडल्ट पॉपुलेशन में 50% लोग औसत IQ वाले हैं, जिनकी IQ 90 से 110 के बीच है। 16% लोग सामान्य से अधिक ब्राइट नॉर्मल IQ वाले होते हैं और इतने ही प्रतिशत लोग मंद सामान्य बुद्धि वाले डल नॉर्मल के हैं। 6% लोग कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, जिनकी IQ 120 से 139 के मध्य होती है। इतने ही प्रतिशत 6% लोग सीमावर्ती होते हैं। लगभग 2.2% लोग प्रतिभाशाली IQ होते हैं, जिनकी IQ 140 से अधिक होती है, तथा इतने ही प्रतिशत लोग 2.2% मानसिक रूप से मंद बुद्धि होते हैं। विश्लर का प्रौढ़ जनसंख्या में IQ का प्रतिशत एक नज़र में। पृष्ठ संख्या 251, बुद्धि लब्धि IQ का प्रतिशत, समूह 50% औसत बुद्धि, 90 से 110 IQ 16%, ब्राइट नॉर्मल 110 से 119 IQ 16%, डल नॉर्मल 80 से 89 IQ 6%, सुपीरियर 120 से 139 IQ 6%, सीमावर्ती 70 से 79 IQ 2.2%, जीनियस 140 से ऊपर IQ 2.2%, मेंटलिटी रजिस्टर्ड 70 से कम IQ। नंबर 2, स्टैनफोर्ड विने बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड विने इंटेलिजेंस टेस्ट। यद्यपि विने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत की थी, परंतु अन्य दूसरे वैज्ञानिकों ने उसे बुद्धि परीक्षण के लिए पूरी तरह वैज्ञानिक नहीं माना। टर्मैन वह पहला मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने सबसे पहले विनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल का संशोधन किया, जिसे 1916 में स्टैनफोर्ड विने स्केल के नाम से प्रकाशित किया गया। फिर बाद में टरमैन एवं मेरिल ने सन 1939 में पुनः इसका संशोधन किया। अतः यह विनय का पहला सफलतम बुद्धि परीक्षण था। यह बुद्धि परीक्षण 2 वर्ष के बच्चों से लेकर प्रौढ़ तक की बुद्धि के मापने के लिए तैयार किया गया। इस परीक्षण में सामान्य बुद्धि परीक्षण के अलावा 4 बौद्धिक कारकों को शामिल किया गया, जिसमें शाब्दिक तार्किक, मात्रात्मक तार्किक, मूर्त अथवा अमूर्त तार्किक तथा अल्प अवधि स्मृति से संबंधित प्रश्नों को भी शामिल किया गया। इस कारण में 15 सह परीक्षण भी रखे गए ताकि बालकों को मानसिक योग्यता का पता आसानी से लगाया जा सके। शाब्दिक एवं मात्रात्मक कारण से बालक का क्रिटिसलाइज्ड इंटेलिजेंस का पता चलता है कि बालक अपनी संस्कृति से कितना अधिक प्रभावित है और कितना अधिक वास्तविक सूचनाओं को रखता है। जैसे जैसे शब्द भंडार, वाक्य विन्यास, रचना आदि, इसी प्रकार अमूर्त मूर्त तार्किक कारकों का पता चलता है कि वह किस सीमा तक कल्चरली वेस्ड है तथा उसमें कितना अधिक जन्मजात आनुवांशिक लक्षण है। पृष्ठ संख्या 252, विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, यह बुद्धि परीक्षण 2 वर्ष से लेकर प्रौढ़ों तक के लिए उपयुक्त था। नंबर 2, इस मापदंड में 2 वर्ष से 4 वर्ष की आयु के बालकों के लिए 2 प्रकार के परीक्षण निर्धारित किए गए थे, जो वार्षिक एवं अर्धवार्षिक थे। नंबर 3, इस बुद्धि परीक्षण में अनेक प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया जिससे बुद्धि का गहन अध्ययन हो सके। नंबर 4, प्रौढ़ों की बुद्धि परीक्षण हेतु नवीन विषयों को स्थान दिया गया। सीमाएं लिमिटेशंस। नंबर 1, इस परीक्षण द्वारा एक निश्चित समय में केवल एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण होता है, अतः अधिक समय धन एवं ऊर्जा व्यय होती है। नंबर 2, यह स्कूल पूर्व बालकों की बुद्धि परीक्षण के लिए बहुत अधिक उपयुक्त नहीं है। नंबर 3, स्टैनफोर्ड विनय का यह परीक्षण अधिकतर शाब्दिक है, अतः अनपढ़ व भाषा को नहीं जानने वाले लोगों के लिए अनुपयुक्त है। नंबर 4, यह परीक्षण के लिए कुशल योग्य प्रशिक्षित विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। नंबर 3, वैश्लर का बालकों के लिए बुद्धि परीक्षण संस्करण 3। डेविस वेस्टलर ने बालकों के बुद्धि परीक्षण के लिए एक मानदंड तैयार किया जो 6 वर्ष के बालकों से लेकर 16 वर्ष के किशोरों के लिए उपयुक्त था। इस बुद्धि परीक्षण में बालकों की बुद्धि की जांच हेतु सामान्य प्रश्नों के साथ ही दूसरे अलग अलग प्रकार के प्रश्न थे। यही कारण है कि वेस्टलर का यह बुद्धि परीक्षण काफी उपयोगी रहा तथा मनोवैज्ञानिकों ने इसका उपयोग बालकों के बुद्धिमापन में किया। इसके अतिरिक्त वेस्टलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस रिवाइज्ड भी 3 वर्ष से 8 वर्ष के बालकों की बुद्धि मापने के लिए काफ़ी उपयोगी था। दोनों ही बुद्धि परीक्षणों में WISC 3 तथा WPPSIR में बालकों की बुद्धि का गहनता से अध्ययन करने के लिए शाब्दिक एवं अशाब्दिक अथवा क्रियात्मक दोनों ही प्रकार के परीक्षणों को शामिल किया गया। प्रत्येक शाब्दिक एवं 6 शाब्दिक तथा 5 क्रियात्मक सह परीक्षण रखे गए, जिसमें 11 अलग अलग स्कोर प्राप्त होते थे। इससे यह लाभ हुआ कि भाषा का ज्ञान रखने वाले और नहीं रखने वाले दोनों ही समूह के बालकों का बुद्धि का ज्ञान हो जाता था। वेस्लर की वयस्क बुद्धि मापने। वेस्लर ने वयस्कों की बुद्धि परीक्षण हेतु स्केल का निर्माण सन 1939 में किया। इस परीक्षण में भी उन्होंने शाब्दिक एवं क्रियात्मक दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को स्थान दिया। यह परीक्षण 16 से 64 वर्ष तक की आयु के सभी व्यक्तियों की बुद्धि जांच के लिए किया जा सकता था, चाहे वे शहरी हों या ग्रामीण, पढ़े लिखे हों या अनपढ़, भाषा को जानने वाले हों या नहीं। इस परीक्षण में शाब्दिक एवं क्रियात्मक दोनों ही प्रकार के परीक्षणों की विशेषताएँ हैं। परीक्षण के 2 भाग हैं। नंबर 1, शाब्दिक मापदंड। इस मापदंड में केवल 6 उपभाग हैं जो निम्नानुसार हैं: रोमन का 1 सामान्य सूचनाएं, रोमन का 2 सामान्य बोध, रोमन का 3 अंक गणितीय तर्क, रोमन का 4 अंकों का स्मृत विचार, रोमन का 5 सादृश्य, रोमन का 6 शब्द भंडार। नंबर 2, क्रियात्मक अथवा निष्पादन मापदंड। इस मापदंड में कुल 5 उपभाग हैं जो निम्नानुसार हैं: रोमन का 1 चित्र व्यवस्था, रोमन का 2 ब्लॉक डिजाइन, रोमन का 3 चित्रपूर्ति, रोमन का 4, वस्तु संग्रह रोमन का 5, अंक प्रतीक। व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण इंडिविजुअल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में निम्नांकित परीक्षण प्रमुख हैं। नंबर 1, अलेक्जेंडर का पास एलांग परीक्षण, अलेक्जेंडर्स पास एलांग टेस्ट 1932। डॉक्टर अलेक्जेंडर ने सन 1932 में गूंगे, बहरे, अंधे, निरक्षर, अनपढ़ लोगों के लिए पास एलांग परीक्षण का निर्माण किया। इसके अलावा यह परीक्षण शिक्षित तथा किसी अन्य भाषा को जानने वाले व्यक्तियों की बुद्धिमापन के लिए भी उपयोगी था। इस परीक्षण में 3 क्रियात्मक परीक्षण रखे गए थे। यह परीक्षण स्कूल जाने वाले बालकों से लेकर किशोरावस्था तक के लिए 6 से 18 वर्ष के लिए तैयार किया गया था। इस परीक्षण में लकड़ी की प्लेट में लाल एवं नीले रंग के टुकड़े एक क्रम में रखे जाते हैं। परीक्षण में कुल 8 डिजाइनें होती हैं। परीक्षण को एक निश्चित समय के साथ बिना लकड़ी के टुकड़े को उठाए केवल इन्हें आगे पीछे दाएं बाएं इधर उधर खिसकाकर कोई डिजाइन बनाना होता है। नंबर 2, भाटिया का क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, भाटियास परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। डॉक्टर भाटिया ने सन 1955 में भारतीय लोगों के बुद्धिमापन हेतु इस परीक्षण का निर्माण किया। यह परीक्षण 11 से 16 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए तैयार किया गया था। इस परीक्षण के अंतर्गत अग्रांकित परीक्षण आते हैं। रोमन का 1, चित्रांकन परीक्षण, पिक्चर ड्राइंग टेस्ट। यह परीक्षण 4 से 10 वर्ष के बालकों के लिए तैयार किया गया है। इस परीक्षण में बालक बालिकाओं को कागज एवं पेंसिल दे दिया जाता है, फिर उसे किसी आदमी का चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। चित्र में बनाए गए आदमी की आंख, नाक, कान, होंठ, गाल, गला, मुंह, धड़, सिर, हाथ पैर आदि अंगों को देखकर और इसके अनुपात को शरीर के अन्य अंगों के अनुपात में मिलाकर बालक की बुद्धि की जांच की जाती है। मगर हाँ, बुद्धि परीक्षण चित्र के कलात्मक एवं सौंदर्यात्मक पहलू पर विचार नहीं किया जाता और ना ही इस पर ध्यान दिया जाता है। पृष्ठ संख्या 254, रोमन का 2, तत्काल स्मरण परीक्षण। यह परीक्षण बालकों की बौद्धिक योग्यता को मापने में काफी उपयोगी रहा है। इस परीक्षण में बालक के सामने किसी वस्तु या चित्र को एक क्षण या मिनट के लिए रखा जाता है और फिर उसे हटा लिया जाता है। बालक को अपनी स्मृति के आधार पर उस वस्तु अथवा चित्र का चित्रांकन करना होता है। रोमन का 3, चित्रपूर्ति परीक्षण, पिक्चर कंपटीशन टेस्ट। इस प्रकार के परीक्षण में बालक की योग्यता को मापने के लिए किसी चित्र को अनेक टुकड़ों से काटकर बिखराकर रख दिया जाता है। परीक्षण के दौरान बालक को अपनी योग्यता के अनुसार एक निश्चित अवधि में इन टुकड़ों को मिलाकर चित्र पूरा करना होता है। रोमन का 4, कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। इस परीक्षण के द्वारा बालक की सामान्य योग्यता के साथ ही विशिष्ट योग्यता का भी पता चल जाता है। इस परीक्षण में एक ईंट के 16 घन होते हैं जो गत्ते पर एक ही आकार में वह एक ही रंग में होते हैं। इसमें 10 डिजाइन होते हैं। बुद्धि परीक्षण करते समय परीक्षार्थी को यह कहा जाता है कि एक निश्चित समय में इन घनों की सहायता से गत्ते पर बने डिजाइन के अनुसार डिजाइन बनाए। बुद्धि परीक्षणों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। बालकों के बहुमुखी व्यक्तित्व विकास में बुद्धि परीक्षणों का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि बुद्धि परीक्षणों से आसानी से यह पता चल जाता है कि बालक कुशाग्र बुद्धि का है, सामान्य बुद्धि का है अथवा मंद बुद्धि का है। यदि बालक मंद बुद्धि का है तो उसकी अच्छी शिक्षा दीक्षा देकर, उस पर अधिक ध्यान देकर, अलग शिक्षक की व्यवस्था कर उसका सर्वांगीण विकास किया जाता है। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता निम्नांकित क्षेत्रों में अधिक है। नंबर 1, वैयक्तिक भिन्नताओं के अध्ययन में, फॉर स्टडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। संसार के प्रत्येक प्राणी में वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। मनुष्य में भी यह भिन्नता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। यहाँ तक कि एक ही माता की कोख में पैदा हुए और एक ही वातावरण में पले बढ़े बालक, दो जुड़वा बालकों में भी वैयक्तिक भिन्नता देखने को मिलती है। उनकी शक्ल सूरत, चाल ढाल, नाक नक्श, रंग रूप, लंबाई मोटाई, कार्य व्यवहार आदि सभी कुछ में भिन्नता होती है। बुद्धि परीक्षणों की सहायता से वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 255। नंबर 2, शिक्षा के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण का बड़ा ही महत्व है। यह बुद्धि परीक्षण के आधार पर अध्यापक यह पता लगाने में समर्थ हो जाता है कि कक्षा में कौन बालक प्रतिभाशाली है, कौन बालक सामान्य बुद्धि का है और कौन बालक सामान्य मंद बुद्धि का है और कौन बालक मूर्ख है। इस प्रकार बालकों की बुद्धि का वर्गीकरण करके उनकी अलग से शिक्षक व कक्षाओं की व्यवस्था की जा सकती है। अधिक प्रतिभाशाली बालकों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था की जा सकती है ताकि वह अपने IQ के आधार पर एडवांस कोर्सेज की तैयारी कर सके, जैसे IAS, PCS, IIT, MBA, CA जैसी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर अपना भविष्य सुखमय बना सके। इसी प्रकार सामान्य बुद्धि के बालकों को एक ही कक्षा में बैठाकर उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है तथा उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। मंद बुद्धि बालकों के लिए अलग से विद्यालय खोले जा सकते हैं तथा उनकी समुचित व्यवस्था की जा सकती है। इतना ही नहीं, बुद्धि परीक्षण द्वारा एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बालकों की बुद्धि का मापन कर आसानी से यह पता लगाया जा सकता है कि किसी बालक का कक्षा में कार्य निष्पादन में कमी का कारण उसकी बुद्धि लब्धि है अथवा कोई और कारक, जैसे गरीबी, माँ बाप का अशिक्षित होना, बहुत दूर से पैदल चलकर स्कूल पहुँचना आदि। बुद्धि परीक्षण द्वारा बालकों की योग्यता का आकलन कर उसके लिए आगामी कक्षा के लिए विषय में पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जा सकता है। 3, व्यवसाय में उपयोगी, यूजफुल इन बिजनेस। बुद्धि परीक्षण का व्यवसाय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। कर्मचारियों, अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों के चयन में, उनकी पदोन्नति में तथा उनके समायोजन संबंधी समस्याओं के अध्ययन में बुद्धि परीक्षण अत्यंत ही उपयोगी है। 4, सेना के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ आर्मी। सैनिकों एवं सेनाधिकारियों के चयन में भी बुद्धि परीक्षण का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही अमेरिका में सैनिकों एवं सेनाधिकारियों के चयन में आर्मी अल्फा तथा आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। आर्मी अल्फा पढ़े लिखे एवं शिक्षित सैनिकों के चयन हेतु उपयोग किया जाता है तथा आर्मी बीटा का उपयोग अशिक्षित सैनिकों के चयन हेतु किया गया है। इन बुद्धि परीक्षणों की सहायता से सैनिकों का चुनाव, इनका वर्गीकरण, इनकी पदोन्नति आदि किया जाता है। 5, मंद बुद्धि के बालकों का पता लगाने में। बुद्धि परीक्षणों की सहायता से मंद बुद्धि बालकों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। बुद्धि परीक्षण में पूछे गए प्रश्नों के हल के अनुसार उनका वर्गीकरण प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि एवं मूर्ख बालकों के रूप में किया जा सकता है। फिर उनकी बुद्धि के अनुसार उनकी शिक्षा दीक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जा सकती है। 6, रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों के निर्माण में, यूजफुल एंड वोकेशनल कोर्सेस। आज न केवल भारत बल्कि विश्व का अधिकांश देश बेकारी व बेरोजगारी को जूझ रहा है। आज पढ़े लिखे लोगों की जमात खड़ी है जो एक साधारण लिपिक बनने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सड़कों पर जूते घिस रहे हैं, परंतु उनके हाथ निराशा ही लगती है। ऐसी स्थिति में बेकारी की समस्या को दूर करने के लिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा का समावेश किया गया है। बुद्धि परीक्षणों की सहायता से विद्यार्थियों को यह निर्देश दिया जा सकता है वे कौन कौन से व्यावसायिक कोर्स का परीक्षण प्राप्त करें जिससे वे पढ़ाई समाप्त करने के बाद उससे धन अर्जित कर सकें। 7, गूंगे, बहरे, अंधे, अपाहिज बालकों को पता लगाने में। बुद्धि परीक्षण से गूंगे, बहरे, अंधे, अपाहिज बालकों का पता आसानी से लग जाता है। ऐसे बालकों के लिए अलग अलग से शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा सकती है ताकि वे भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो सकें एवं सम्मानित जीवन जी सकें। 8, अन्य क्षेत्रों में, इन अदर फील्ड। उपरोक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त बुद्धि परीक्षण का उपयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है, जैसे अपराधी बालकों की समस्याओं के समाधान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोगों के निदान में एवं उपचार में, अनुसंधान के क्षेत्र में आदि। बुद्धि परीक्षण का महत्व एक दृष्टि में, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट एट अ ग्लांस, बुद्धि परीक्षण का महत्व व्यक्तिक भिन्नताओं के अध्ययन में, व्यवसाय में मंद बुद्धि के बालकों का पता लगाने में, अन्य क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, रोजगार नोन्मुख पाठ्यक्रमों के निर्माण में, गूंगे अंधे बहरे अपाहिज बालकों का पता लगाने में।